نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Synopsis of Quran Quran ki jhalkiyan وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ آج اس سیریز میں ہم کریں گے اقتربا پارہ نمبر 17 آئیے دیکھتے ہیں پارہ نمبر 17 کے مضامین کیا ہیں اس پارے کے بھی ایک سے زائد حصے پہلا حصہ جس میں پوری سورۃ الانبیاء ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھی آپ کتنی خوبصورت دعائیں سیکھنے والے ہیں انبیاء کرام کی دعائیں اسی میں آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسی میں دعائے ایوب بھی ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اور باقی دعائیں بھی ہیں اس پوری صورت میں تین چیزوں پہ فوکس ہے قیامت رسالت توحید پھر اس کے بعد پارے کا دوسرا حصہ جس میں پوری صورت حج ہے یعنی اس پارے میں دو صورتیں ہیں اس کے بعد اس صورت حج کے اندر چھ چیزیں ہیں قیامت تخلیق انسان کے مراحل مذاہب کے لحاظ سے چھ گروہ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج مومنین کی چار علامات دیگر احکامات آئیے دیکھتے ہیں سورۃ انبیاء جو بڑی خوبصورت سی سورت ہے 112 آیات ہیں اس میں ترتیب کے اعتبار سے 21 نمبر کی سورت اس پورے کی ابتدائی آیات کو دیکھیں تو اس میں آپ کو چند باتیں ملیں گی کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے مشورہ کر لیں قیامت کے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا غم یونس عذاب الہی کی شدت کے لوگ نشے میں نظر آئیں گے اللہ کے گھر کو پاک رکھنے کا حکم اور ایک مثال کے ذریعے سے شرک کی تردید یعنی پورے پارے میں یہ پانچ چھ چیزیں بھی ہائی لائٹڈ ہیں پہلی تین آیات 1-3 انبیاء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ٹاپک ذرا سنیے لوگوں کی بے حسی اور غفلت کیونکہ حساب کا وقت قریب آ رہا ہے اور وہ منہ پھیرے بیٹھے ہیں جو چیز جتنی قریب آتی ہے نا ہماری تیاریاں اتنی عروج پہ ہوتی ہیں جوش آنے لگتا ہے قیامت جتنی قریب آتی جا رہی ہے ہم اتنے غافل ہیں اور ہماری اپنی موت کا وقت جتنا قریب آتا جا رہا ہے ہم اتنے غافل ہوتے جا رہے ہیں اللہ ہماری غفلت کے پردے چاک کر دے اگر گورنمنٹ ایک اعلان کر دے نا زلزلہ آنے والا ہے سیلاب آنے والا ہے ہریکین آنے والا ہے لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں قرآن 1400 سال سے کہہ رہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اور کان پہ جوں تک نہیں رینگتی اللہ اگلی آیتوں میں کہتے ہیں سنتے تو ہیں لیکن ان کے دل پتہ نہیں کن چیزوں میں مگن ہیں لاہیتا قلوبهم جب نئی بات سنتے ہیں ایسے ہی بس اٹھ کے چل پڑتے ہیں آج اندھے بہروں کی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس کو یہ آیت ہے صحابہ میں سے کسی ایک نے مال غنیمت میں سے دو زمین کے ٹکڑے ملنے پر ایک اپنے ساتھی کو دینا چاہا کہ میرے پاس دو کیا کرنے ایک تم لے لو ایک میں اس نے کہا نہ نہ آج رات ہمارے نبی پر وہ آیت اتری ہے جس نے دنیا میں جو تھوڑی بہت بھی ہماری کشش تھی وہ بھی نکال دی کہا وہ کیا کہ اقترب للناس حسابهم آج بھائی بہنیں وراثت پہ لڑتے ہیں شوہر بیوی المنی پہ اور کس کس پہ جھگڑتے ہیں طلاقیں صرف اس لیے رکی رہتی ہیں آدھا گھر دینا پڑے گا اور کئی لیتے اس لیے کہ آدھا گھر مل جائے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے کسی زمین کے اوپر پانی آنا ہے اور اس نے ڈوب جانا ہے تو آپ اس کو $10,000 کا بھی لیں گے کہاں 10 لاکھ کا لینا تو یہ غفلت ہے جس نے دنیا میں دل مارے لگا دیے آگے ہے 4-9 مشرقین کی ایزا رسانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل 10 قرآن حکیم میں آپ کا بھی ذکر ہے کس کا فیہ ذکرکم اس میں آپ کا بھی ذکر ہے کہاں ڈھونڈا آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو ایک صحابی اسی آیت پہ سوچ میں پڑ گئے میں کدھر ہوں آیت سامنے آ گئی صورت توبہ کی السابقون الاولون ہر کام میں نیکی والے کہنا نا میں تو نہیں ہوں وہ پھر آگے تھوڑا سا پڑھے تو نظر پڑ گئی کفار کے برے انجام کی استغفر اللہ میں وہ بھی نہیں اے اللہ میں کدھر ہوں تو صورت توبہ جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں اس میں آیت کا نمبر بھی آیا بتا تو اس میں خالت عمل صالحن باخر سیجیہ کچھ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال دونوں کو جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ مجھے پتہ چل گیا یہ میں ہوں یعنی اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے کام نہیں چھوڑتے تو اس کتاب میں آپ کا ذکر ہے हमारा जिक्र कहीं आ जाए, और हो भी जिक्र खैर तो हम लोगों को खोल खोल के दिखाते हैं। अखबार के टुकड़े लोग संभाल लेते थे जिसमें कभी तस्वीर छपती थी। अल्लाह अकबर, फी ही जिक्र को हम ट्रॉफियाँ लगाते हैं, मेडल्स लगाते हैं, और ये कुरान आपको मेरा अपना जिक्र बताती है और हम इसको रिकमेंड नहीं करते। कितनी बेनसीबी की बात है। आयत 11 से 15, अजाब के वक्त कौमों का हाल क्या है, इसका नंबर नोट कर लें। आप जब ये आयतें पढ़ते हैं ना, सिर्फ इसका तर्जुमा, और वो तर्जुमा आपको क्या बताता है कि ये तर्जुमा किसी जलजले वाली जगह पे खड़े होके रिकॉर्ड किया गया है। बिल्कुल आंखों देखा हाल है। इंशाल्लाह जैसा ये शॉर्ट कोर्स है, अल्लाह ने चाहा तो सिर्फ तर्जुमा पढ़ पढ़ के भी एक दौरे कुरान कराना है, नथिंग एल्स। अल्लाह करे कि हम इस कुरान को हर रंग में कर लें, क्योंकि इसी के अंदर खैर है। क्या पता चला, इख्तरब अलिन्नास, इम्तिहान का दिन सरों पर है और लोग गाफिल हैं। आपके बच्चे ना हाँ पढ़े इम्तिहान के करीब होने में, तो आप जो उसको ताने देती हैं, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, पढ़ लो खप जाओ। माओ के बल सफ़ेद हो जाते हैं बच्चों की पढ़ाई में, और होते हैं क्या वो चार चार पाँच पाँच साल के बच्चे। लेकिन हमारे बच्चों के आखिरत के इम्तिहान कैसे जा रहे हैं, हमें इसके बारे में सोचना है। फिर मेरा जिक्र कुरान में है तो मैंने इस कुरान को पढ़ना है। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। कायनात पे गौर व फिक्र करके अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानना है। कुरान के मुनकर गाफिल लोग हैं, झूठी बातें बनाने वालों के लिए वईल है। 16 to 18, कायनात खेल तमाशा नहीं, बल्कि यहाँ तो मार्का हक को बातिल बरपा है। ये भी बड़ी अहम आते हैं। वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। लगते ये तो कुफार का गुमान है कि ये ड्रिंक बी मैरी और दुनिया मौज मस्ती, आज मरो कल ख़त्म, ये खेल नहीं है। इसमें तो हक और बातिल की बुनियाद पे तुम चूज़ किए जा रहे हो। 19 से 23, आसमानों और ज़मीन में अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। 24 25, हर रसूल की दावत दावते तौहीद थी। 26 to 29, फरिश्तों का असल मुकाम, यानी वो भी अल्लाह के बंदे हैं। 30 to 33, अल्लाह ताला की कुदरतें और नेमतें। 34 35, मौत व हयात का सिलसिला, इंसानों की आजमाइश का ज़रिया। 36 37, मुशरिकीने मक्का की गुस्ताखियों का जवाब। 38 to 41, मुशरिकीने मक्का के लिए धमकी। 42 to 44, मुशरिकीने मक्का के लिए दावते गौर व फिक्र। 45 to 47, दिल सोजी के साथ वाज और नसीहत असर रखता है। वो कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है दिल में उतरती है, पर नहीं मगर ताकतें परवाज रखती है। फारसी में भी कुछ ऐसे हैं। तो दिलों से बात निकाला करें, बच्चों से, घर वालों से, सहेलियों से, किसी से भी कोई बात दीन की करनी है ना, दिल के अंदर से निकाला करें। इंशाल्लाह आपकी बात उनके दिलों में जाएगी। फिर आयत 48 to 50, अल्लाह ताला की किताबों से फैज़ कौन पाते हैं। क्या पता चला, शिर्क खुली गुमराही है। अम्बिया भी अल्लाह के हुक्म से रहनुमाई लेते थे। अल्लाह अच्छाई बुराई पर कादिर है, इंसान नहीं। अल्लाह पाक है, इंसान ही जालिम है। उम्मते मुस्लिमा एक उम्मत है जिसको अल्लाह ने इंसानियत के लिए निकाला। 51 to 52, वलक़दातैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल। अल्लाह हमें भी रुश्द दे दे। हकीकी रब कौन है, इब्राहीम ने इसको पा लिया। 53 to 64, बुत परस्तों पर इत्माम हुज्जत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े थे, लेकिन कब, जब उन पे हुज्जत तमाम कर दी। हम जाकर किसी के बुत नहीं तोड़ सकते जब तक उस पे तबलीग की हुज्जत पूरी ना कर दें। 65 to 70, ये है खूबसूरत सी आयतें। आग हसरत इब्राहीम के लिए गुलिस्तान बन गई। आज भी जो हो इब्राहीम का सही माँ पैदा, तो आग भी गुलिस्तान बन सकती है। इब्राहीम के ईमान में इतनी हरारत थी कि दुनिया की आग उसके आगे ठंडी हो गई। आज हमारा ईमान इतना बन जाए, अल्लाह आज फितनों की आग जिसमें हमारे बच्चे सुलग रहे हैं उसको भी इंशाल्लाह ठंडा करेगा। और दुआ क्या थी हज़रत इब्राहिम की आग में जाते हुए, सब मांग लीजिए, अपनी नस्लों को जहन में रख के मांगिए। वो तो नमरूद की एक आग थी ना, आज तो ऐसी कई आगें हैं। हसबुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। आय 74 to 75, हज़रत लूत पर अल्लाह ताला के इनामात। آیت 76-77 حضرت نوح پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، 78-82 حضرت داؤد اور حضرت سلیمان پر اللہ تعالیٰ کی عنایات، آیت 83-84 حضرت ایوب کے صبر کا اجر۔ اس پہ بھی بالکل نئے لیکچرز میں آپ کو ایک لیکچر دکھے گا دعا ایوب، ابھی اسی سیریز کا ضرور سنیے گا، آئی ایم شیور کہ آپ کو بہت کچھ یاد آئے گا۔ ہم سب کے بہت سارے پیارے بیماریوں سے دنیا سے گئے، دکھ تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو یہ لیکچر بالکل اسی سینٹیمنٹ اور اسی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ آیت 85-86 صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا کی جاتی ہے۔ 87-88 حضرت یونس کی فریاد رسی، کیا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آیت نمبر 88-87 حضرت یونس کی فریاد رسی۔ آیت 89-90 حضرت زکریہ کی دعا۔ کسی کو جانتے ہیں جس کے اولاد نہیں ہیں فیملی میں کوئی بھی؟ ان کو ان آیتوں کا بتائیے گا، کیسے 60-70-80 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دے دی۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں عمر کے بعد بچہ نہیں ہوتا، ہو جائے تو یہ نہیں ہوگا، وہ ہو جائے تو یہ نہیں ہوگا۔ 89-90 حضرت زکریہ کی دعا، یعنی اولاد کی نعمتوں سے محروم کوئی بھی ہے اگر، اور اگر ابھی بھی خواہش ہے تو مانگیے، چاہے آپ 60-70 کے بھی کیوں نہیں ہوگے۔ آیت 91 حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اعزاز۔ 92-93 تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد، کیا؟ بندگی رب۔ اللہ کرے کہ ہماری بھی زندگیوں کا یہی مقصد ہو جائے۔ آیت 94-95 اچھے اعمال کا موقع دوبارہ نہیں ملے گا، اونلی چوائس اس دنیا کی، آج کے دور میں ہی ہمیں اس چیز کو اپنانا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس یہی کر لیجئے، باقی کام اللہ آپ کے لیے آسان کرے گا۔ آیت 96 حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، آپ نے نوٹ کیے یأجوج مأجوج کا ذکر سورۃ کہف میں بھی تھا اور ادھر بھی آ گیا، قرب قیامت کی ایک نشانی، یأجوج مأجوج کی یلغار، اور یہ وقت لگتا ہے کہ اب قریب ہے۔ آیت 97-100 معبودان باطل مشرکین کے ساتھ جہنم میں جلیں گے، وہ کیوں؟ وہ تو لکڑی کے پتھر کے بت ہے، ان کو کیا درد ہوگی؟ نہیں، ان کے پوجنے والوں کو دکھایا جائے گا کہ آج یہ خود کو آگ میں نہیں جلنے سے روک سکے، تمہارے دکھ درد کیسے یہ دور کر سکتے ہیں۔ آیت 104 اللہ کی بڑائی اور قدرت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم نطوی السماء کالسجل للکتب، ایسے جیسے لٹو کو گھمایا جاتا ہے نا، یہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، نطوی ایسے جو یو یو نہیں ہوتا، اللہ پورے آسمان کو ایسے گھمائے گا، کون اس کی قدرت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ آیت 105-106 زمین کے وارث بالآخر نیک لوگ ہوں گے۔ 107-112 آخری آیتیں سورۃ انبیاء کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرک کے امکانات کا صد باب، یعنی اٹس امپاسبل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں، اور کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ اس کے بعد سورت حج ہے، ارکان اسلام میں واحد رکن جس کے نام پہ ایک سورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ حج۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سورت حج کا پیغام قیامت کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 22 نمبر کی سورہ 78 آیات ہیں، اور شروع کیسے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذخل کل مرضیۃ۔ آپ میں سے کسی کو دعوت دوں کہ اس کو اردو ترجمہ کریں؟ کتنوں کو آتا ہے؟ چلیے سنیے۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یہ وہ دن ہوگا جس دن تم دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس کو جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی، یعنی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے سب سے زیادہ کانشیس ہوتی ہے، قیامت کے دن وہ بھولے گی، اور دوسرا کیا حال ہوگا؟ وَتَدَعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور وضع حمل ہو جائے گا، یعنی ابارشن ہو جائے گا، گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، और तुम देखते हो लोगों को कि वो नशे में हैं, मदहोश हैं, वह माहुम भी सुकारा, वो नशे में नहीं, वलाकिन अज़ाब अल्लाह ही शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद है। यानी क़यामत का दिन लोगों को हर कीमती चीज़ से गाफिल कर देगा। तो सूरत हज की पहली दो आयात वकूए क़यामत का हौलनाक मंज़र, क्यों, क्या रब्त है? सफ़रे हज को सफ़रे मैयत से ज़रा तशबीह देकर देख लें, आपको जवाब मिल जाएगा। इधर भी सबको छोड़ कर जाते हैं, अकेले जाते हैं, सफ़ेद अहराम बांधते हैं, उधर भी सफ़ेद कफन है। इधर भी लोग फूल भेजते हैं और एयरपोर्ट पे फूलों की पत्तियां फैलाते हैं, उधर भी यही कुछ होगा। तो क्या पता चला कि हज क़यामत और मौत की याद दहानी है। आयत 3-4, बग़ैर इल्म के दीनी तालीमात पर एतराज़ात का इंजाम। दुआ कीजिए कि अल्लाह इल्म लेकर भी हमें ज़्यादा बोलने वाला ना बनाए, कहाँ बेइल्म लोग दीन सिखाने लग जाएं। आज हमारी जहालत की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। आयत 5-7, दोबारा ज़िंदा किए जाने के दो सबूत। आयत 8-10, क़यामत का बयान। पूरी सूरह हज में क़यामत क़यामत आपको दिख रही है। 11-13, मुनाफिकाना तर्ज़ अमल, हिपोक्रेसी। ये भी अहम आयतें, इनको नोट कीजिए। वमिनन्नासी मन यअबुदुल्लाह अला हर्फिन, लोगों में कोई ऐसा भी जो किनारों पर रह के इबादत करता है अल्लाह की। क्यों? जहाँ ज़रा मुश्किल हुक्म लगा तो कमरे से बाहर चले जाएंगे, दरवाज़े के पास बैठो ताकि निकलना आसान लगे। वहाँ क्या था सूरह बकरा में? उदखुलु फिस्सिल्मी काफा, पूरे दिन में आओ। याद रखिए, किनारों पर रहने वाले दूसरों को भी अंदर आने से रोकते हैं। वो कहेंगे अंदर पता नहीं कितनी सफोकेशन है, हम नहीं जाते। हम में से वो मुसलमान जो आज किनारों पर रह रहे ना, ये न्यू लोगों को इस्लाम की तरफ आने से रोक रहे हैं। आयत 14, बा अमल मोमिनों के लिए बिशारत। आयत 15-16, उम्मीद की रस्सी थामे रखो। आयत 17, हक पर कौन है, फैसला होगा रोज़े क़यामत, निशानियाँ अल्लाह ने दुनिया में बता दी। आयत 18, कायनात की हर शय अल्लाह को सजदा कर रही है। आयत 19-22, जहन्नुम के अज़ाब का हौलनाक मंज़र। आयत 23-24, हिदायत याफ्ता लोगों के लिए बिशारत। आयत 25-36, हज और कुर्बानी का ज़िक्र। अगर आप से कोई पूछे कि कुरान पाक में कुर्बानी के मसाइल का है, जिसको वाकई मसाइल कहते हैं, तो आप सूरत हज का नाम याद रखिएगा। आयत 37, नेकियों की कबूलियत तकवा के साथ। क्या पता चला इतने हिस्से में? इल्म के बग़ैर बहस जहालत की अलामत है। अल्लाह के सिवा किसी और को मौला पुकारना गुमराही है। इंसानी तख्लीक के मराहिल इसमें देखे। जिहाद मज़लूम मुसलमानों की मदद का ज़रिया है। हज आमाल की मैल कुचैल साफ़ करने का अमल है। ख़ुद साख्ता माबूदों की मिसाल एक मक्खी सी है, कि एक मक्खी भी वो पैदा नहीं कर सकते। आगे आयतें आएंगी। 38-41, बहुत प्यारी आयत है। इन्नल्लाह युदाफ़ अनिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों के बिहाफ़ पे लड़ाई करेगा। ये जो युदाफ है ना, ये बिहाफ़ है, अल्लाह मोमिनों का दिफा करेगा। क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की इजाज़त और इसकी हिकमत। 42-45, मुसलमानों के लिए खुशखबरी, कुफार के लिए धमकी। 46, कुफार की आंखें नहीं दिल अंधे हैं। ये भी बड़ी रकी कहते हैं, आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते हैं। अल्लाह हमें दिल और आंखों दोनों के अंधेपन से बचाए। आयत 47-48, ज़ालिम बर्बाद होकर रहेंगे। 49-51, इंतज़ार के दो रास्ते, यानी वार्निंग देने के दो तरीके। 52-57, शैतान की आमेजिश, अल्लाह की तरफ से इसलाह। यानी शैतान को रखना डाल देता नबी की सोच में, उससे पहले ही अल्लाह ने कुरान की आयतें उतार दी और उसके बाद अल्लाह के नबी रोक गए। मेरी दुआ है आप सबको, ये मैं तो एक एक दो दो लफ्ज़ बोल के आगे जा रही हूँ ना, मेरी दुआ है कि एक एक आयत के साथ जो मेरे दिमाग में शुरू हो जाती है ना रील, आप उससे भी ज़्यादा इसको समझने वाले बन जाए। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आधा घूंट बोल के आगे जा रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना बहुत सीख रहे, बहुत, तो मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं ना इसके पीछे और क्या। सिर्फ टेस्टर है, कोई एक छोटी सी आइसक्रीम का स्कूप दे के जो खाता है वो कहता है बड़ी मज़े की है, वो कहता है पहले पूरा खा के देखो फिर क्या बनता है। अपनी बाकी ज़िंदगियाँ कुरान को सीखने में लगा दें तो भी इंशाल्लाह इट्स नॉट टू लेट। फिर आयत 58-59, अल्लाह की राह में हिजरत वालों का सिला, आगे जवाब भी आ गया, कुछ हिजरतें करनी पड़ती हैं, फिर कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन कदर बहुत होगी आपकी बात में। 60-62, मज़लूम को अल्लाह की मदद मिलती है। 63-66, अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबानी फरमाता है। आयत 67-72, इबादात के तरीके पे एतराज़ क्यों, मक्का वाले बड़े एतराज़ करते थे अल्लाह के नबी पे, हर दिन कोई ना कोई इल्ज़ाम ही लगा होता था, उसका जवाब है इसमें। आयत 73-74, अल्लाह ताला की मार्फत की कमी शिर्क का सबब बनती है। ये बड़ी प्यारी मिसाल है, बल्कि आप बच्चों के साथ बैठकर इन आयतों को सुने ना तो इतनी कॉमन सी बात है ना, मक्खियों की मच्छरों की बातें तो बच्चों को भी अच्छी लगती हैं, इसमें शिर्क की बहुत खूबसूरत तरीके से नफ़ी की गई। और आयत 75-76, अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुला, अल्लाह चुन लेता है मलाइका में से पैगाम लाने वालों को। ये इशारा है अब आगे अगली आयतें जो बहुत ही प्यारी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में, तो क्या पता चला कि अल्लाह हमारे हर अमल से वाकिफ़ है। और आयत 77-78, ये आपकी मेरी आयतें हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकू वस्जुदू वाबुदू रब्बकुम, उम्मत मुस्लिमा के लिए झंडा। इंशाल्लाह DQ 24 के पारा 17 की ये मेन आयत है कि फेथ इन एक्शन हो तो फिर अल्लाह क्या करता है। अल्लाह हमें खैर लेने और देने वाला बना दे। तो क्या सीखा, खानकाहें हों, गिरजे हों, माबद और मसाजिद, सब की हिफाजत करनी है, किसी के मज़हब को नहीं छेड़ना, लेकिन अपने दीन को फ्लूट होने से बचाना है। फिर इसमें हमने देखा कि अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और कुरान में भी, यानी मुस्लिम थे हर दौर के लोग। ये जो आज हमारे नाम है ना सबके लाखे, ये फ़िरका वराना नाम है। ये लफ्ज़ यहूदियत, नसरानियत, ईसाइत, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म, ये भी फ़िरके हैं, ये भी अपने दौर में मुस्लिम थे। हज़रत ईसा के दौर के लोग मुसलमान थे, हज़रत मूसा और बनी इसराइल के अम्बिया कराम जो उनकी तरफ आए थे उनके दौर में उनका नाम मुसलमान था। ये तो अभी जुमा जुमा 8 दिन की बातें हैं, ज्यूइज़म और क्रिश्चियनिटी ये तो बाद की बातें, ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज हमारे भी बड़े साहब के इलाके हैं। अल्लाह हमारी आँखें खोल दे। तो पूरे पारे में से हमने क्या सीखा, अल्लाह के कामों की पुकार आए तो लब्बैक कहिए, दिल के अंधे नहीं बनना, फलाह पानी है तो इसका तरीका रकू और सजूद और रब की बंदगी है, हक वाले हर दौर में पिसते रहे, बदला इतना ही लो जितनी ज़्यादती हो, इल्म के बग़ैर बहस नहीं करनी, आखरत की तैयारी करें इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए, तो वक्त कम है मुकाबला सख्त। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।